الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک پاکرانہ پیش کی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال ہمارا عنوان ہے فضائل امہات المومنین اور اہل بیت اطہار گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات ان کے فضائل مناقب بیان کیے تھے اور آج انشاءاللہ دو عظیم ہستیاں جن میں ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دو کے متعلق آپ کے سامنے بیان کریں گے اور انشاءاللہ تعالی روزانہ دو ازواج مطہرات کے متعلق آپ کے سامنے بیان ہوگا اور آخری دنوں میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیان کریں گے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ محترمہ پہلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حیات مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور یہ بھی ان کی خصوصیت تھی اور سرکار کی ساری اولاد انہی کے بطن سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی ہم آپ کو کل بتا چکے ہیں کہ دو عظیم ہستیوں نے جب وصال کیا ایک سرکار کے چچا حضرت ابو طالب اور دوسرے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو عظیم ہستیوں کی جدائی قلبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گزری اور آپ کو بہت زیادہ رنج و ملال ہوا۔ ایک وہ ہستی تھی کہ جو گھر کے باہر آپ کی حفاظت، آپ کی مدد، آپ کی معاونت اور کافروں کے مقابلے میں آپ کے لیے ڈھال تھی، وہ حضرت ابو طالب کی شخصیت۔ اب دوسری شخصیت گھر کے اندر، جب باہر کے تانوں تشنوں سے دل برداشتہ ہو کر کافروں کی تکالیف سے، ان کی شکایتوں سے، ان کے ظلم و ستم سے سرکار دو عالم علیہ السلام وہ سب سہ کر گھر میں تشریف لاتے تھے، تو گھر کے اندر جس ذات نے، جس شخصیت نے نبی پاک علیہ السلام کی دل جوئی فرمائی، قلب مبارک کو تسکین دی، وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ دو عظیم ہستیاں جب جدا ہوئیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج و ملال ہوا، اور اس سال کا نام آپ نے رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ دو کمسن صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ گھر میں تھے۔ اچانک رفیق حیات کا جدا ہو جانا، ادھر تبلیغی معاملات، ادھر کافروں کی تانے تشنے شکایتیں، ظلم ستم تکالیف، ادھر گھر کے اندر ان بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ ظاہر ہے ایک عورت چاہیے، ماں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور دو صاحبزادے جو کمسن ہوں، ظاہر ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ بڑا آزمائش کا مرحلہ تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو تھے ہمہ وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ گھر کے اندر ضرورت ہے کہ ایک خاتون ہو جو بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان سب میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت تھی۔ ویسے نہیں فرمائے، جو عام طور پہ بدبخت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار نے اتنی شادیاں کی اور اس قسم کے الزامات اور ایسی چیزیں کہ جو ہم بیان کرتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جتنی ازواج مطہرات کے متعلق بیان ہوگا تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آخر تک جتنے نکاح نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ، بغیر اس کے نہیں کہ بھئی جیسے عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں، ایک کر لی چلو دوسری کر لو، چلو تیسری کر لو، ایسی نہیں۔ اور نبی کا ہر عمل حکمت یا مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت خولہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک یہ پریشانی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی خاتون نہیں جو ان بچوں کی دیکھ بھال کرے، اگر کہ وہ خدمت کرتی تھی، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حضور آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ ضرورت ہے کہ گھر میں جو دو بچیاں ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے۔ تو فرمایا میں کس سے شادی کروں؟ کہا سودا بنت زمان، ان سے آپ نکاح فرما لیں۔ اچھا ابتدا میں حضرت سودا بنت زمان رضی اللہ تعالی عنہا ان خواتین میں، ان لوگوں میں جو سابقون الاولون میں سے، جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی۔ آپ جانتے ہیں کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، कोई मामला ऐसा न छोड़ा जिससे कि मुसलमानों को तकलीफ ना हो। हर किस्म की तकालीफ, परेशानियां, जुल्म और सितम, तो सरकार ने फरमाया था हबशा की जानिब हिजरत कर जाओ। तो हबशा की जानिब दो मर्तबा हिजरत हुई, तो दूसरी मर्तबा जो हिजरत हुई उसमें हजरत सौदा बिनत जमा और उनके शौहर सकरान बिन अमर, ये दोनों उसमें भी शामिल थे। और ये दोनों भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे, जिस तरह आम सहाबा और सहाबियात। सरकार ने हुक्म फरमा दिया, हिजरत ये लोग कर गए। वहां जाकर अमन और सुकून से रहने लगे, लेकिन इनके दिल में एक गम था, एक कलक था, एक दर्द था। क्या हम तो यहां सुकून से हैं, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में काफिरों की सख्तियां, उनकी अजियतें, तकालीफ, उनके ताने तिशने, ये सब सह रहे। अक्सर आप जिक्र करती थी अपने शौहर से कि देखो हम यहाँ कितने आराम से हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम और दीगर सहाबा किस तरह वहां पर रहते हैं। ऐसा करते हैं कि हम वापस मक्के चलते हैं। ये दोनों अक्सर आपस में गुफ्तगू करते थे। एक दिन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा, आसमान पर चांद चमक रहा था और अचानक वो टूट कर मेरे ऊपर गिर गया। सुबह हुई, अपने शौहर सकरान से कहा कि सकरान मैंने एक ख्वाब देखा। कौन सा ख्वाब? ख्वाब ये देखा है कि आसमान पे चांद चमक रहा है, अचानक टूट कर मेरे ऊपर गिर गया। उन्होंने कहा वाकई जो कुछ तुम बयान कर रही हो यही तुमने देखा है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने देखा वैसा बयान कर। उन्होंने कहा बस फिर ये समझ लो अनकरीब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा और तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आओगे। अब आप देखें, उलमा ने ये लिखा कि हो सकता है कि ताबीर का इल्म वो जानते हैं, इसलिए कि ख्वाब की ताबीर देना हर एक के बस की बात नहीं। इसीलिए सरकार ने हुक्म दिया कि अपना ख्वाब हर एक को मत सुनाओ। और हदीस शरीफ में आया कि ख्वाब जब तक सुनाया न जाए वो बगैर सर और पैर के। जब सुना दिया गया और जिसको सुनाया गया उसके मुंह से जो निकला वही ताबीर मुरतब हो जाए। तो इसलिए किसी आलिम को, किसी अपने शेख को या किसी समझदार इंसान को जो ताबीर का इल्म जानता हो उसे अपना ख्वाब बताना चाहिए। अच्छा, जो कुछ उन्होंने कहा बाद में वो पूरा हुआ। तो इसलिए उलमा ने लिखा कि इसका मतलब ये है कि उनके शौहर ताबीर का इल्म जानते थे, जो कुछ उन्होंने बयान किया बेऐन ही उसी तरह। इसके कुछ अरसे के बाद सकरान बीमार हो गए और इतने शदीद बीमार हुए कि उसी बीमारी में उनका इंतकाल हो गया। आपको सख्त सदमा पहुंचा, दीगर मुसलमानों के साथ जो हबशा में हिजरत कर गए थे, हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां मुकीम रही और उसके बाद हिजरत करके दोबारा मक्का मुअज्जमा तशरीफ ले आई। हजरत खौला बिनत हकीम सरकार की खिदमत में हाजिर हुई और यही बात बयान की कि आका आप शादी क्यों नहीं कर लेते, एक औरत होनी चाहिए जो घर की देखभाल करे, आपकी दो छोटी बच्चियां हैं इनकी देखभाल करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किससे मैं निकाह करूं? कहा सौदा बिनत जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये बिल्कुल मुनासिब है और इनसे आप निकाह फरमा लो। फरमाया तुम इनसे जाकर पूछ लो, अगर उनकी मर्जी हो तो फिर हम निकाह कर लें। ये फौरन उनके पास गई, उनको जाकर ये पैगाम सुनाया। वो खुश हुई, कहा मैं तो वैसे ही आका की गुलाम, मैं तो उनकी उम्मती भी हूँ, वो मेरे आका हैं, मेरे सरदार हैं। अगर ये शरफ, ये मकाम, ये मर्तबा मुझे मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। नबी की ज़ौजियत में आना ये मामूली बात नहीं। उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ बनना, जितने भी मोमिनीन है उनकी माँ, तो मामूली शर्म नहीं। फौरन रजामंदी जाहिर कर दी। उनके वालिद से पूछा, उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई इंसान मेरी नजर से नहीं। उनका कबीला मोहतरम है, वो खुद शरीफुल नफ्स हैं, वो खुद आला नसब आला हसब आला खानदान आला कबीला, इन तमाम चीजों से ताल्लुक रखते हैं। मुझे कोई इतराज नहीं, सौदा से मालूम कर लो। कहा उनसे पूछ लिया, उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी। कहा ठीक है, मैं भी तैयार। चुनाचे इस तरह हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी पाक अलैहिस्सलाम से हुआ। तो ये दूसरी ज़ौजाए मोहतरमा हैं जो सरकार की ज़ौजियत में आई। पहली उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इनको फिर ये शरफ हासिल है। निकाह के वक्त इनकी उम्र 55 साल और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 50 साल। अब आप इसे भी अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो बदबख्त लोग इतराजात करते हैं कि इनको शौक था और माजल्ला बहुत गलत किस्म की बातें करते हैं। एक आदमी इतनी बूढ़ी औरत से शादी करे 55 साल उम्र, बल्कि आप ये देखें कि पहला निकाह जब हुआ है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल और सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल, अपने से बड़ी उम्र की औरत। और दूसरा निकाह हुआ तो दूसरी ज़ौजाए मोहतरमा हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 55 साल और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल। यानी कि दोनों निकाह ये बता रहे हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज कजाए शहवत या किसी और बात के लिए नहीं, बल्कि हिकमत और मसलहत के तहत सरकार ने निकाह फरमाया। अब यहां पर जरूरत थी कि एक खातून हो जो बच्चों को भी संभाले, घरदारी भी करे, खाने पीने का इंतजाम भी करे, जो जो घर की खवातीन कर, ताकि फिर घर के बाहर इस्लाम की तबलीग है, तरवीज है, इशाअत है, लोगों की तालीम है, ये तमाम चीजें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आराम के साथ कर सके। और हुआ भी यही कि जब ये दूसरा निकाह आपने फरमाया और हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के हरम में तशरीफ ले आई, उम्मुल मोमिनीन बन गई, उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाली और हुजूर अलैहिस्सलाम को घर की जानिब से बिल्कुल बेपरवाह कर दिया। आप फिकर ना करें, मैं ये सब कुछ कर। हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों की परवरिश निहायत मोहब्बत के साथ, फिक्र के साथ की, निगरानी करती रही, उनसे मोहब्बत करती रही और साथ साथ सरकार की खिदमत भी वो करती रही। तो ये दूसरा निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। नबुव्वत के 13वें साल अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। कहां पर? मदीना मुनव्वरा। आप जानते हैं कि काफिरों ने मक्के में अरसे हयात मुसलमानों पर तंग कर दिया, जुल्म और सितम। जब पता चलता कि फला शख्स मुसलमान हो गया है, उस पर हर किस्म के जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते, रहना दुश्वार कर दिया। आका ने फरमाया मदीने तैयबा हिजरत कर जाओ। जो भी आता था कहा जाओ तुम मदीने तैयबा चले जाओ। एक गए, दूसरे गए, तीसरे गए, कुछ तन्हा गए, कुछ अहलो अयाल के साथ गए। और उस वक्त भी आप देखें सहाबा की कैफियत क्या थी कि जब ये हिजरत करते थे तो काफिर रोक लेते, कहां जा रहे हो? मदीने तैयबा। ये माल नहीं छोड़ दो, ये सामान नहीं छोड़ दो, ये माल दौलत तुमने कमाई है यहीं से हम मदीने नहीं ले जाने देंगे। कुर्बान जाओ नुफूस कुदसिया पर, इस्लाम की खातिर माल छोड़ दिया, सामान छोड़ दिया, असबाब छोड़ दिया, घर छोड़ा, मोहल्ला छोड़ा, शहर छोड़ा, दौलत छोड़ी, सिर्फ ईमान की दौलत सीने में लेकर चले, सिर्फ ईमान की दौलत। वो जानते थे कि ये सब कुछ बन जाएगा, लेकिन ईमान की दौलत अगर छिन जाए तो फिर ये हासिल नहीं है। सब सब छोड़। अब जब हिजरत हुई, करते रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। हाजिर हुए, सरकार मैं भी हिजरत कर लूं, मुझे इजाजत हो। फरमाया अबू बकर ठहरो, सब्र करो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें बेहतरीन रफीक सफर अता कर। अपनी जान भी खा रहा वो मिजाज शिनासे रसूल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि इशारा सरकार का अपनी जानिब है, ठहर गए। और फिर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हिजरत फरमाई। अब हिजरत फरमाई और मदीने तैयबा हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। मदीने में वो मुसलमान जो पहले से हिजरत करके गए थे, बेचैन थे, बेकरार थे, कब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं, उनको इत्तला मिल चुकी थी कि सरकार रवाना हो गए। उनके साथ सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह होती दरख्तों पर चढ़ जाते, दूर तक देखते कि कोई काफिला आ रहा है या नहीं। हम पहले से देख लें कि आका तशरीफ ला रहे हैं। जब काफी टाइम गुजर जाता तो फिर नीचे उतर जाते, लोग अपने मकानों की छतों पर चढ़ जाते कि ताकि हम दूर से ही देख लें कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं। जब कोई आसरा नहीं होता फिर मायूस होकर उतर जाते। एक दिन इनकी बेचैनी बेकरारी बढ़ गई, सब इंतजार में हैं कब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। अचानक एक यहूदी ने दूर से देख लिया, उसको कुछ गर्द गुबार नजर आया। उसने कहा मुसलमानों सुनो, मुझे कोई आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं यही तो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। मुसलमान जो दरख्त पर चढ़े हुए थे, कुछ अपने घरों की छतों पर थे, उन्होंने जब गौर से देखा सब पुकार उठे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ लिया। उनकी खुशी का क्या ठिकाना। गौर करो, जरा सा तसव्वुर करो, जिनके लिए सख्तियां झेली थी वो आ रहे थे, जिन पर जानो मान फिदा किया था वो आ रहे थे, जिनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया था वो आ रहे थे, जो अल्लाह के महबूब थे वो आ रहे थे, जो सबसे बेहतर अल्लाह की मखलूक में थे वो आ रहे थे। जैसे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर तशरीफ फरमा है और तमाम सहाबा खुशी से झूम रहे हैं। शायद ने इसको अपने अंदाज में बयान किया, वो लिखते हैं, मुसलमानों के बच्चे बच्चियां मसरूर थे सारे, गली कूचे खुदा की हमद से मामूर थे सारे, नबुवत की सवारी जिस तरफ से होती जाती थी, दुरूदो नात के नगमात की आवाज आती थी। दुरूदो नात के नगमात की आवाज आती थी। हर कोई चाहता था कि सरकार हमारे घर तशरीफ फरमा हो, हुजूर हमारे घर, कहते हमारे घर। फरमाया छोड़ दो इस ऊंटनी को, ये मामूर मिन अल्लाह है, जहां ये बैठ जाएगी वहीं हमारा कयाम होगा। सब ने छोड़ दिया। ऊटनी पर आकर रौनक अफरोज है, ऊटनी इधर जाती है, कभी इधर कभी उधर देखती है, कभी उधर देखती है, लेकिन ऊटनी कहां गई। रुकी अकबर की नाकाब हुक्मे हजरते बारी, जहां एक सिमत बसते थे अबू अय्यूब अंसारी। कहां गए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर की तरफ? क्या कैफियत थी, क्या माहौल था, क्या मकाम था, क्या नजारा था? जब आए तैबा महबूब बेकरी में हजरत बारी, बना मस्कन मकान हजरत अय्यूब अंसारी। बुलंदी आसमानों की फिदा उस घर की किस्मत पर, मकीने सिदरा को भी रश्क है उसकी सादत पर, मकीने सिदरा को भी रश्क है उसकी सादत पर। कुर्बान हो जाओ उस मकान की किस्मत पर जहां अल्लाह के हबीब रौनक अफरूज। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में कयाम फरमा हुए, उनका लकब हुआ मेजबाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका मजार मुबारक इस्तांबुल तुर्की में है, मर्दाए खलायक है। इस फकीर ने उस मजार मुबारक की ज्यारत की, ये शरफ मिला, ये मकाम मिला, ये मर्तबा मिला। सरकार ने कयाम फरमाया, मस्जिद नबवी की तामीर शुरू कराई और मस्जिद नबवी के साथ दो हुजरे बनवाए। एक हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए और दूसरा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, क्योंकि उनका निकाह भी मक्के में हुआ लेकिन रुखसती मदीने तैयबा में। तो सरकार जब वहां तशरीफ ले गए तो ये दो हुजरे तामीर कराए। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त तक मक्के मुअज्जमा में थी, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन हालात में और जिस कैफियत में हिजरत फरमाई थी वो आप सुन चुके हैं, यहाँ पर उसकी तफसील का वक्त नहीं है। तो पूरे अहलो आयाल के साथ हिजरत करना नामुमकिन था, इस वजह से सरकार ने अपने साथ सिर्फ सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिया और ये दोनों अल्लाह की हिफाजत में मदीने तैयबा पहुंच गए। वरना उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जहां भी ये मिले इनको मारकर कोई खत्म कर दे, या तो ये खबर दे कि हमने मार दिया या इनको जिंदा पकड़ कर ले आए। लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी जान को इन लोगों से बचा ले। वो मारना चाहते थे, अल्लाह बचाना चाहता था। वो खत्म करना चाहते थे, वो बाकी रखना चाहते थे। और उसने बता दिया कि याद रखो मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला जबरदस्त, और उसने बचाया। सरकार पहुंच गए, जब वो हुजरे तैयार हो गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों को 500 दिरहम और दो ऊंट लेकर भेजा कि मेरे अहले बैत को ले आओ। तो हजरत जैद बिन हारसा और हजरत अबू राफे ये दोनों रवाना हुए मदीने तैयबा से और मक्का मुअज्जमा आए और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत जिनमें उस वक्त हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की दूसरी ज़ौजाए मुतर्रम और दो साहबज़ादियां सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन तीनों को लेकर बख़ैर व आफियत मदीने तैयबा पहुंचा। जब मदीने तैयबा ये लोग पहुंचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन हुजरों में इनको ठहराया जो इनसे पहले तैयार कर दिए गए। हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा निहायत नेक खुश मिजाज खुश अखलाक खातून थी। आम लोगों में होता है ना, बहुत से बिल्कुल खामोश रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ वो होते हैं कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोलते हैं, होते हैं ना बहुत सारे। लेकिन कुछ वो होते हैं कि किसी महफिल में बैठे तो उसको कुछ से ज़ाफ़रान बना देते हैं, जहां बैठते हैं वहीं रौनक हो जाती है, लोगों से हंसी मजाक करते हैं, लेकिन तहजीब के अंदर, हंसी मजाक तहजीब के दायरे में, ऐसा नहीं कि उससे बाहर। इस्लाम ने मजाक की भी इजाजत दी है, लेकिन तहजीब और तमद्दुन के साथ। किसी से ऐसा मजाक मत करो जो जिससे उसे कल्बी सदमा पहुंचे, या उसकी बेइज्जती हो, या उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मजाक फरमाते थे, लेकिन आपके उस मजाक में भी सच्चाई होती थी, झूठ कभी नहीं आया। अपने अमल से सरकार ने साबित किया। एक आराबी आया, या सुनना मुझे एक ऊंट चाहिए ऊंट। सरकार ने फरमाया साहबा से, इसे ऊंटनी का बच्चा दे दो। उसने कहा ऊंटनी का बच्चा मैं क्या करूंगा, अरे बच्चा तो छोटा होता है ना, ऊंटनी का बच्चा मैं क्या करूंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ऊंट दे दो, आप कह रहे हैं ऊंटनी का बच्चा दे दो। अब सुनो आका ने क्या फरमाया, फरमाया भाई हर ऊंट किसी ना किसी ऊंटनी का बच्चा ही तो है। अब उसने सुना तो कहा वाकई ये बात तो सही, मजाक भी हो गया, सच भी हो गया, जबान पर झूठ भी नहीं आया, और किसी की दिलादारी भी नहीं। तो इस किस्म का मजाक। तो हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत ये थी कि उम्महातुल मोमिनीन में बैठती थी, तो रिवायत में आता है कि जिस महफिल में बैठती थी हंसी मजाक करती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की दिल आजादी हो, दिल को खुश करने के लिए। इसी तरह जब वो ये देखती थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम खामोश हैं, या किसी फिक्र में हैं, या कोई ऐसी फिक्र परेशानी कोई ऐसी लाहक हुई, तो कोई ना कोई ऐसी बात अदब के दायरे में रहकर करती थी कि सरकार तबस्सुम फरमाया करते, हुजूर खुश हो जाते, उनकी इस बात से खुश हो जाते। चुनाते एक मर्तबा रिवायत में आता है कि हजरते आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरते हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों भी अजवाज मुतहरात हैं, इनको ये पता था कि हजरते सौदा को दज्जाल के नाम से नफरत है। जाहिर है दज्जाल के नाम से तो वैसे भी कोई दज्जाल से मोहब्बत तो नहीं करेगा, लेकिन जब वो सुनती थी ना तो उनको सब नागवार गुजरता था। इन दोनों ने क्या किया, हजरते सौदा जब तशरीफ लाई ना तो उनसे कहा कि सौदा तुमने एक बात सुनी, उन्होंने कहा क्या हुआ, हमने सुना है कि दज्जाल नाजिल हो गया है। जैसे ये सुना तो वो दौड़ कर गई और खेमे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया, और ये दोनों हंसने लगी, हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, पूछा, इन्होंने हाल बताया, सरकार मुस्कुराए और खेमे के बाहर खड़े होकर कहा, सौदा दज्जाल अभी नहीं आया है, तुम बाहर आ जाओ, दज्जाल अभी नहीं आया। तो ये फिर वहां से बाहर तशरीफ ले आए। मसला ये कि इस तरह आपस में खुलूस और मोहब्बत इन अज़वाज मुतहरात में था, किसी किस्म की नफरत, शकावत, अदावत या कोई रकाबत नहीं थी, मोहब्बत के साथ रहते। जाहिर है जो सरकार की सोबत में हो उसमें ये तमाम चीजें कैसे हो सकती, उसमें तो खुशखलकी होगी, मोहब्बत होगी, मवद्दत होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 10 हिजरी में जब आखिरी हज अदा फरमाया, अजवाज मुतहरात को सरकार ने अपने साथ रखा, उनमें हजरते सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। आपके दराज कद थी और जिसमें मुबारक फरवा था, तो आपने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाजत ली कि सरकार अगर इजाजत हो रश में चलना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं मुजदलफे से रात ही में मीना को रवाना हो जाऊं, क्योंकि ये लोग तो सुबह जाएंगे ना, तो सुबह रश होगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं रात ही में रवाना हो जाऊं ताकि मैं सुबह पहुंच जाऊं। आका ने इजाजत दे दी और हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से रात ही में रवाना हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो चलती थी, रश में चलना उनके लिए मुश्किल था, तो वो पहले से वहां पहुंच गई और उन्होंने वहां जाकर फजर की नमाज अदा कर ली। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं कि काश मैं भी ऐसा करती जैसा सौदा ने किया था, इन्होंने तो इजाजत ली और ये चली गई, मैं भी इजाजत लेकर चली जाती तो मैं भी पहले पहुंच जाती। बाहर सूरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़ौजाए मोहतरमा हुजूर की बड़ी खिदमत की, सरकार से बड़ी मोहब्बत की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से बड़ी मोहब्बत की और माँ की तरह उनको पाला पोसा और उनकी निगरानी इन्होंने फरमाई। एक खुसूसियत आपकी और थी कि चमड़े की सनत में आप महारत रखती थी, चमड़े से बहुत सी चीजें आप बनाती थी और वही आपका जरिया माश था। चमड़ा लेकर उससे चीजें बनाती थी, उसको फरोख करती थी, उससे कसीर माल आपको हासिल होता था। इसीलिए आप सदका और खैरात बहुत ज्यादा करते, जितना माल हासिल होता था सबके सब सदका कर दिया, खैरात कर दिया, गरीबों मिस्कीनों बेवाओं यतीमों में सब दे दिए। हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 अहादीस आपने रिवायत फरमाई, जिनमें से एक बुखारी में और बाकी अहादीस अहादीस की दीगर कुतुब में मौजूद है। निहायत फहम व फिरासत वाली, आकिला समझदार, बाकिरदार, खुश गुफ्तार खातून थी। उनका विसाल 22 हिजरी में हुआ, उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 72 साल थी, यानी जब निकाह हुआ है सरकार की ज़ौजियत में आई तो उम्र मुबारक 55 साल थी और विसाल हुआ तो उम्र मुबारक 72 साल थी। गोया उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक में 14 साल नसीब हुए, ये शरफ उन्हें हासिल हुआ जो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद उनकी इन्फिरादियत थी और किसी ज़ौजा को इतना अरसा सरकार की रिफाकत में नहीं मिला हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए उनके मरकज मुबारक पर और उनकी नालायन से लगे हुए ज़र्रों के सदके में हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। तीसरी ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इसमें गिरामी आयशा, कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला और लकब सिद्दीका और हुमैरा, ये उनके अलकाबात थे। उम्मे अब्दुल्ला उनकी कुन्नियत इस तरह हुई कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वत में फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इनकी विलादत हुई, जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे, तो उनको सरकार की खिदमत में लाया गया। आका ने अपने गोद में लिया, दुआ पे दहन उनको चटाया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद थी, सरकार ने फरमाया तुम उम्मे अब्दुल्ला हो, तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। उसी वक्त से उनकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला हो गई। वालिदे गिरामी का नाम अब्दुल्ला, उनकी कुन्नियत अबू बकर और लकब सिद्दीक, वालिदा मोहतरमा का नाम उम्मे रुमान। अब यहां पर एक एतराज और उसका जवाब। मुस्तशरिकीन और दीगर दुश्मनान इस्लाम जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर इतराज़ात करते हैं और खुसूसन अज़वाजे मुतहरात के हवाले से इतराज़ात करते हैं कि इतनी बीवियां इनकी थीं और खुसूसन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र के बारे में बाद लोगों ने लिखा कि जब निकाह हुआ तो उम्र 6 साल थी और रुख्सती हुई तो उम्र 9 साल थी। किसी ने लिखा कि जब निकाह हुआ तो उम्र 9 साल थी, रुख्सती हुई तो उम्र 15 साल थी। मुख्तलिफ रिवायात इस सिलसिले में हैं। वो इतराज ये करते हैं कि इतनी बड़ी उम्र का एक शख्स इतनी कम सिन लड़की से निकाह करे, ये मुनासिब नहीं। और फिर इसके आगे बहुत ज्यादा खुराफात और शान रिसालत में गुस्ताखियां कर कर। देखिए पहली चीज ये याद रखिए कि नबी का कोई अमल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, हमारा महबूब नहीं बोलता मगर वही इलाही के साथ। जो हम उनकी तरफ वही करते हैं वही तुम्हारी तरफ पहुंचा देते हैं। तो गौर करो, जब उनका बोलना ही वही के ताबे है तो उनके दीकर आमान वही के ताबे क्यों ना हो। बात समझ में आ रही? जिनका बोलना ही वही के ताबे है, जो हम उनकी तरफ वही करते हैं वही तुम्हारी तरफ पहुंचा देते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नबी का कोई अमल वही इलाही के हुक्म रब्बानी के खिलाफ। पहली बात ये ध्यान में रखें। दूसरी बात, जितने निकाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए उनमें जब आप गौर करें हर निकाह में कोई ना कोई मसले हद पोशीदा है, जो हम आगे चल के उम्मात मोमिनीन का जिक्र आएगा हम वो सारी हिकमतें आपके सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह में क्या हिकमतें थी और क्या मसले हद। पहली हिकमत, अरब में मुंह बोले भाई की बेटी से निकाह करना हराम समझा जाता। यानी मुंह बोला भाई हकीकी भाई नहीं, किसी को कहा कि आप मेरे भाई हैं, उसने कहा ठीक है मैं आपका भाई, उसकी बेटी से निकाह करना हराम समझा जाता, नजायज है, हराम है, नहीं हो सकता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस निकाह के जरिए उनकी उस रस्म को खत्म कर कर। जब लोगों ने पूछा कि सरकार ये तो आपके भाई हैं, फरमाया अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं, हकीकी भाई नहीं, लिहाजा इनकी औलाद से निकाह जायज। एक हिकमत तो ये, जो अरब में एक दस्तूर था ना, इस निकाह से उसको खत्म कर दिया, जाहिलियत की रस्म को खत्म कर दिया। दूसरी हिकमत, शव्वाल में शादी करना अरब बहुत बुरा समझते थे। शव्वाल के महीने में निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती, रुख्सती नहीं हो सकती, इस किस्म की बात। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा निकाह भी शव्वाल में हुआ, मेरी रुख्सती भी शव्वाल में। सरकार ने इस अमल से जमाने जाहिलियत की इस रस्म को भी खत्म कर दिया। दो हिकमत, तीसरी हिकमत जो बहुत बड़ी हिकमत है, देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलिमे कायनात मौलिमे इंसानियत, जो मर्द थे उनको आपने मसाइल समझाए, लेकिन जो खवातीन थी तो खवातीन को खवातीन के मसाइल औरत ही बेहतर समझा सकते। तो निकाह करने की एक वजह यह भी थी कि ये मेरी अज़वाजे मुतहरात मुसलमान खवातीन को उनके मसाइल आराम से समझा दें। और ये हुआ भी कि सरकार के अज़वाजे मुतहरात ने बाकायदा दर्स की महफिलें कायम की जिनमें सरे फेरिस्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और कम उम्री में निकाह की वजह क्या थी? उनकी उम्र कम और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र ज्यादा। वजह क्या थी कि मेरे विसाल के बाद ये अरसे दराज तक जिंदा रहे। और सरकार ने जब विसाल फरमाया तो उम्मुल मोमिनीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के 46 साल बाद तक जिंदा रहे। गोया वो 46 साल तक सरकार की जनपत और खलबत हुजूर की अहदी इस्लाम के अहकामात जो बराहे रात उन्होंने आका से सुने थे उम्मत को बताती रही समझाती रही इल्म लुटाती रही। ये हिकमत नबी पाक अलैहिस्सलाम की। वरना अगर अपने हम उम्र खातून से शादी करते तो कुछ अरसे बाद मिसाल जिस तरह के दीगर का हुआ। चौथी हिकमत ये थी नबी पाक अलैहिस्सलाम उस कम उम्र लड़की में उसकी जहानत और फतानत को देख रहे थे, उनकी फकाहत को देख रहे थे, उनकी बसीरत को देख रहे थे, उनकी सीरत को देख रहे थे, उनकी अकल फहम और फिरासत को देख रहे थे और जानते थे कि ये मेरे विसाल के बाद अरसे दराज तक जिंदा रहेगी और मेरा इल्म इसके जरिए तमाम उम्मत तक पहुंचता रहेगा। बात समझ में आई? ये हिकमत नबी पाक अलैहिस्सलाम की। और हुआ भी यही। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी एक आदत थी जो बात होती थी उसी वक्त पूछ लिया करते। कोई बात हुई आका ये बताएं कि ये मसला कैसे है, ये किस तरह होगा, उसी वक्त हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते और ये उसे याद कर लेते थे, उस मसले को उसी वक्त याद कर लेते। इसीलिए उनका मकाम इतना बुलंद हुआ इल्म के लिहाज से, फकाहत के लिहाज से, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दीन का निज़ हिस्सा इस हुमैरा से हासिल करो। गौर कीजिए, सहाबा से फरमाया अपने दीन का निज़ हिस्सा यानी आधा हिस्सा इस हुमैरा से हासिल करो। और सहाबा हासिल करते थे, सरकार के विसाल के बाद सहाबा हाजिर होते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे में होती थी, सहाबा बाहर बैठते थे, सवाल करते थे उम्मुल मोमिनीन ये मसला बताइए कैसा है, आप फौरन जवाब दिया करते, इस मसले का हल क्या है फौरन जवाब दिया करते। इल्म में, तिब में, शेर में, शेर गोई में, हर चीज में यदे तूला रखती थी उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। चुनाते आप सहाबा के अकवाल सुनिए। इमाम ज़हरी फरमाते हैं अगर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के इल्म के मुकाबले में तमाम उम्महातुल मोमिनीन बल्कि तमाम औरतों के उलूम को रखा जाए तो हजरत आयशा के इल्म का पल्ला भारी हो जाए, इतना इल्म उन्होंने सरकार से हासिल किया। हजरत उरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं मैंने किसी औरत को तिब में, फिका में और शेर में हजरत आयशा से बढ़कर नहीं पाया, हर मामले में मैंने इन्हीं को ज्यादा पढ़ा। हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं हम असहाबे रसूल जब किसी हदीस पाक को समझने में मुश्किल महसूस करते थे और हमने उस मुश्किल का हल हजरत आयशा से पूछा, खुदा की कसम उसका हल हमने उनके पास पाया। कोई मुश्किल होती थी हम फौरन उनके पास पहुंच जाते, ये मुश्किल हमें पेश आ रही है, इस हदीस में ये मसला है, ये फला चीज है, फरमाते हैं फौरन उम्मुल मोमिनीन वो मुश्किल हल फरमा देती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास मुश्किल का हल ना हो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फकीहा और मुहद्दिसा थी, 2210 अहादीस उन्होंने रिवायत फरमाई, 2210 जिसमें से 147 अहादीस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम मुत्तफिक हैं, 147 अहादीस पर। और आपने आपसे दीगर सहाबा ने रिवायत की और ताबेईन ने आपसे रिवायत की, ये शान है उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की। ये उनका इल्म था, बड़े बड़े सहाबा उनके हलके दर्स में शामिल होते, जब सहाबा शामिल हों, जब मर्दों का ये हाल है तो फिर औरतों की क्या कैफियत है, किस तरह उन्होंने अपना इल्म औरतों तक और मर्दों तक मुंतकिल किया और 46 बरस तक बराहे रास्त सरकार से जो फैज हासिल किया था 46 बरस तक उसको आगे पहुंचाया। یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت تھی، آپ نے اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے بصیرت سے دیکھ لیا تھا کہ آج یہ کم عمر لڑکی جس کو میں اپنی زوجیت میں لے رہا ہوں میرے وصال کے بعد عرصہ دراز تک علم لوگوں کو پہنچاتی رہے گی، یہ ان کی شان تھی۔ ان کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، سرکار کی کیفیت یہ تھی کہ کسی زوجہ محترمہ کو کسی سفر میں آپ ساتھ رکھتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ سفر کرنے لگے، ایک مقام پر پہنچے، آپ کا ہار جو تھا وہ گم ہو گیا، ہار ہوتا نہیں گلے میں عورتیں پہنتے، کھو گیا۔ انہوں نے تلاش کیا، نہیں ملا، قافلہ چلنے کے لیے تیار تھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار کھو گیا، مل نہیں رہا۔ سرکار نے ایک آدمی کو بلایا، بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ وہ چلے گئے تلاش کرنے کے لیے، فرمایا پڑاؤ ڈال دو یہیں پر، ٹھہر جاؤ، عائشہ کا ہار ملے گا تو پھر چلیں گے۔ پڑاؤ ڈال دیا گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور ام المومنین کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما ہو۔ ادھر کیا ہوا، جس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہاں پانی نہیں، اور پانی نہیں تو وضو نہیں، بغیر پانی کے وضو ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتا، نماز ہوتی ہے بغیر وضو کے نہیں، سب نے بولے اس کا مطلب ہے کچھ بغیر وضو پڑھنا ہی چاہیے، پڑھ تو نہیں رہے۔ اچھا صحیح، مؤذن صاحب نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، یہ تو پڑھ نہیں سکتے اس لیے اقامت ہی ان کو کرنی۔ خیر بارہ، ایک آدمی سے پوچھا نا کہ بغیر وضو نماز ہوتی ہے، کہتا ہاں ہوتی ہے، کہا کیسے، کہنا میں نے پڑھی تھی ہو گئی تھی، ایسے تو نہیں کرتے آپ لوگ، بغیر وضو کے نماز نہیں اور بغیر پانی کے وضو نہیں۔ اچھا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو پانی نہیں، اب نماز کا وقت قریب آ جائے گا، اب ان کو بے چینی گھبراہٹ۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے جا کر کہا، سرکار سے تو کہہ نہیں سکتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا کیا، کیا سرکار سے کہہ دیا ہار گم ہو گیا، انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، قافلہ رک گیا، یہاں پانی نہیں، اب نماز کا وقت ہوگا تو ہم کیا کریں گے، سب کہہ رہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، غصے میں آئے، جب آ کر دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر انور ام المومنین کے زانوں پر رکھ کر آرام کر۔ اب انہوں نے آ کر ان کی کمر پہ ایسے انگلی سے کہا، یہ کیا کیا تم نے، سب رکوان دیا آقا سے کہہ کر، اب سب وہ مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں یہاں پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو وضو نہیں، اور وضو نہیں تو نماز نہیں، اس قسم کی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بالکل خاموش، میں ایسے بیٹھی کہ میں ہل بھی نہیں سکتی، ادھر سرکار کا سر انور میرے زانوں پر، ادھر میرے والد پیچھے سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور انگلی سے مجھے مار رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے، میں کیا کروں۔ عجیب پریشانی کی کیفیت، ظاہر ہے صحابہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، انہوں نے آ کر ان کو کہا، ادھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی ربانی نازل فرمایا، سرکار نے آنکھ کھول دی، اللہ فرماتا ہے فلم تجد ماء فتیمموا صعیدا طیبا، جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ آیت تیمم نازل ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھا، اسلام کے احکامات جو ہے نا بتدریج نازل ہوئے۔ ان الدین یسرن، دین میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا پہلی امتوں کے لیے سختی تھی، ایک جگہ مقرر تھی، یہی نماز پڑھو، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، اور اگر ایسا ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی کہ صرف مسجد میں ہی نماز ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا، سنو، پہلی امتوں کے لیے نماز کی عبادت کی جگہ مقرر تھی، میرے لیے میرے رب نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا، محبوب جہاں چاہو نماز پڑھو۔ जहां कहो नमाज पढ़ो। अब आप मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, आप किसी खानकाह में नमाज पढ़ सकते हैं, आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं, आप सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, आप घास में नमाज पढ़ सकते हैं, खुश जमीन पर नमाज पढ़ सकते हैं, मट्टी पर नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने वाले तो बनो, हम हर जगह कबूल कर लेंगे। हर जगह नमाज। इसी तरह पहले अगर पानी ना हो तो नमाज नहीं हो सकती थी, इसलिए कि वजू नहीं हो सकता। ये हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की बरकत थी कि उनकी वजह से ये आयत तैमम नाजिल हुई। ना वो हार गुम होता, ना वो सरकार से कहती, ना काफिला रुकता, ना आयत तैमम नाजिल। और हुआ यही, जब आयत तैमम नाजिल हो गई और कुरान ने कह दिया जब तुम पानी ना पाओ तो पाक मट्टी से तैमम कर लो, सहाबा खुश हो गए। और फिर काया पलट गई, वही सहाबा जो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहे थे देखिए आपकी बेटी आयशा ने क्या किया है, सरकार को रोक दिया, अब यहाँ पानी नहीं है, हम कैसे वुजू करेंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे। जब आयत तैमम नाजिल हुई तो हजरत उसीद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर कहा अबू बकर ये कोई पहली बरकत नहीं है तुम्हारे खानदान की, ऐसी बरकतें तो हमें मिलती रही, ये पहली बरकत नहीं है। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हु को डांटा था कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, सहाबा मुझे कह रहे हैं जब आयत नाजिल हुई तशरीफ लाए और कहा ऐ जाने पिदर मुझे नहीं पता था कि तेरा कदम इतना बरकत वाला है कि हमें तैमूम का तरीका मालूम हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ, आयत तैमम नाजिल हो गई, अहकामात मिल गए, सरकार ने काफले को हुक्म दिया रवाना हो जाओ। जब रवाना होने के लिए ऊंट को उठाया गया, ऊंट के नीचे से वो हार मिल गए, ऊंट के नीचे से वो हार मिल गए। देखो अल्लाह की हिकमत थी ना, हर चीज में हिकमत है। क्या सरकार को नहीं पता था कि ऊंट के नीचे हार है, पता था या नहीं था? मेरा ईमान ये कहता है कि उनको पता था। ऊंट भी आराम से बैठा होगा कि मैं तो बैठे ही रहूं, आयत तो नाजिल हो जाए। सरकार को यकीनन इल्म होगा, हर बात में हिकमत थी। खालिक कायनात भी जानता था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जानते थे, लेकिन उम्मुल मोमिनीन की अजमत को जाहिर करना था, उनकी बरकत को जाहिर करना था। बहाना हार का बन गया, हम सब के लिए तैमूम का तरीका आ गया। ये बरकत है उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा अता फरमाया। सखी इतनी थी, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1,00,000 दिरहम आपकी खिदमत में भेजे। 1,00,000 दिरहम, आज तो लाख की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत है लाख की? कोई वैल्यू नहीं। उस जमाने में 1,00,000 दिरहम आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास। रावी कहता है वो दिरहम आए सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि शाम होने से पहले आपने वो 1,00,000 दिरहम सब गरीबों यतीमों में खैरात कर दिया। 1 दिरहम भी शाम को आपके पास नहीं था, 1 दिरहम भी आपके पास नहीं था। इसी तरह उनकी एक खसूसियत ये भी है, सरकार ने फरमाया आयशा जिब्रील आए हैं और तुम्हें सलाम पेश कर रहे हैं। जिब्रील आए हैं और तुम्हें सलाम पेश कर रहे हैं। फरमाती है मैंने कहा मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मेरी तरफ से भी सलाम पेश कर। आपका एक गुलाम था जिसका नाम था अबू यूनुस, वो किताबत में बड़ा माहिर था। आपने उससे कुरान करीम का एक नुस्खा लिखवाया खुद अपने लिए और आप उसी नुस्खे से तिलावत करती थी। हजरत आयशा फरमाती कि सूरह बकरा और सूरह निसा का जब नुजूल हुआ मैं उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी जब इन दो सूरतों का नुजूल हुआ। और वो आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा कि जब सरकार हुजरे में उनके होते थे तब भी कुरान नाजिल होता, तब भी कुरान नाजिल होता। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मेरी तीन खसूसियतें हैं जो किसी ज़ौजाए मुतरमा को हासिल नहीं हुई। एक ये है कि मैं बाकिरा हुजूर के निकाह में आई। दूसरी ये है कि मेरी बारात में कुरान की आयात नाजिल हुई। और तीसरी ये है कि मेरी गोद में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया और मेरे हुजरे में ही आराम फरमा। कयामत तक उस हुजरे में सरकार आराम फरमा। तो ये है शान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत। एक सहाबी अर्ज करते, मैंने सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कौन सबसे ज्यादा प्यारा है? फरमाया आयशा। कहा मर्दों में? कहा उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। इसी तरह दीगर अहदीस है। इससे ये पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को आपसे बेहद मोहब्बत थी। इसीलिए हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बारी भी आयशा को दे दी। सरकार ने बारियां मुकर्रर की थी ना, एक दिन एक ज़ौजा मुतर्रमा क्या, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। इन्होंने कहा मैंने अपनी बारी भी उनको दे दी। दीकर अजवाज मुताहिरात रश करती थी कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमने आपके सामने दो अजीम हस्तियों की शान बयान की, उनका जिक्र मुबारक किया। एक हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो दूसरी ज़ौजाए मुतर्रमा, और दूसरी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो तीसरी ज़ौजाए मुतर्रमा। इंशाअल्लाह कल परसों और इसके बाद जो सिलसिला चलता रहेगा, तो रोजाना दो अज़वाजे मुताहिरात के मुताल्लिक आपके सामने बयान करेंगे। इसी ज़ौक और शौक के साथ आप तशरीफ लाते रहिए। ये सब हमारी माएँ हैं, हमारे सर के ताज हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। अल्लाह ने इनको ये अजीम मर्तबा, अजीम मकाम अता फरमा दिया कि या निसा नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम तो बेमिसाल हो, बेनजीर। जब वो नबी बेमिसाल और बेनजीर है, तो जरूरी था कि उसके निकाह में जो आए वो भी बेमिसाल हो, वो भी बेनजीर हो, वो भी लाजवाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रसूल भी बेमिसाल है, उनकी तमाम अज़वाज भी बेमिसाल। अल्लाह तबारक व तआला इन सब के मरकज मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाएं। उनके वसीले जलीला से हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएं और हम सब के गुनाहों को माफ फरमाएं। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।